नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इससे के अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कार पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहन के विकास पर 8000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाके में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फुटबॉल में फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। 2 घंटे तक चले रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमें 1-1 से ड्रॉ पर थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।